एक हफ्ता बीत गया था, पर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। चौबीसों घंटे कमरे में बंद रहती थी वो, एकदम खामोश हो गई थी। कमरे में उदास और मायूस सी बैठी रहती थी, जहां देखती वहीं देखती ही रह जाती थी। नहाने जाती तो खड़ी खड़ी तब तक भीगती रहती जब तक अक्षय आकर शावर बंद नहीं करता था। कहीं खो सी जाती थी वो, किसी भी बात पर कोई रिएक्ट ही नहीं करती थी। नींद की गोली के बिना उसे नींद भी नहीं आती थी। फलक दो तीन दिन रुककर अपनी ससुराल चली गई थी, उसकी भी मजबूरी थी, सुमित को अभी उसकी जरूरत थी। दादी वहीं रुकी थी, पर उम्र के इस पड़ाव पर बार बार सीढ़ियां चढ़ना उनसे होता नहीं था। अक्षय परछाई जैसे हर पल उसके साथ रहता था, न सिर्फ उसका ख्याल रखता था बल्कि बातों से उसका मन बहलाने की कोशिश भी करता था, मोटिवेशन स्टोरी सुनाता था। इन दिनों उसने आहाना को ऐसे संभाला था जैसे एक माँ संभालती है अपने बच्चे को। हालांकि आहाना पर कुछ खास असर होता नहीं था, पर कोशिश जारी थी। आहाना की फैमिली मिलने आती थी और आहाना को उसी हालत में देखकर दुखी मन से मायूसी वापस लौट जाती थी। सुबह का वक्त था, अक्षय रोज की तरह आहाना के लिए नाश्ता बनाने आया था। शरीर में कमजोरी थी और ऑपरेशन भी हुआ था, इसका ध्यान रखते हुए उसका नाश्ता, लंच, डिनर सब वही रेडी करता था और दादी कभी कभी उसकी मदद करती थी। रूपाली जी से उसे कोई उम्मीद नहीं थी। अन्वय आज जरा जल्दी शोरूम चला गया था, माल की डिलीवरी लेनी थी उसे। अभिजीत जी मंदिर में बैठी दादी के संग पूजा पाठ कर रहे थे। मेड रूपाली जी के आदेशानुसार सबका नाश्ता तैयार कर रही थी। अक्षय आहाना के लिए जूस बना रहा था जब रूपाली जी वहां पहुंच गईं। अक्षय को काम करते देखकर उनकी भ्रिकुटी तन गई। लग गए सुबह सुबह अपनी बीवी की सेवा में, व्यंग्य भरे लहजे में उन्होंने तंज कसा, जिसने अक्षय का ध्यान उनकी ओर खींचा। अक्षय ने नजरें घुमाकर उनके आक्रोश भरे चेहरे को देखा और सहज शांत स्वर में बोला, माँ मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज कुछ ऐसा मत कहिए जिससे मेरी प्रॉब्लम बढ़े। सच कहा था उसने, आहाना की हालत के कारण वो पहले ही बहुत परेशान था। उस पर रूपाली जी ताने मारने से बाज नहीं आती थीं, जिससे वो और परेशान हो जाता था। रूपाली जी ने अक्षय की बात खिंचलाते हुए रोषपूर्ण लहजे में जवाब दिया, तो परेशान तो तुम अपनी मर्जी से हुए हो, क्या जरूरत थी इस लड़की को वापस यहाँ लाने की? उसके माँ बाप लेकर जा तो रहे थे अपने साथ उसे, जाने देते, उनका सरदर्द अपने सर क्यों लिया? उनकी बेटी थी, खुद देख लेते क्या करना है। तुम बेवजह यहाँ उसकी दाई अम्मा बने हो, कहाँ उसे तुम्हारी सेवा करनी चाहिए और तुम अपना काम धंधा छोड़कर उसकी सेवा में लगे हो। उनकी बातें सुनकर अक्षय की भौहें तन गई। उस हादसे के बाद से वो बिल्कुल खामोश था और उसका पूरा ध्यान सिर्फ आहाना पर था। वो किसी भी तरह बस उसकी हालत में सुधार चाहता था, पर आज वो चुप न रह सका। एक हद तक ही कोई भी इंसान कोई बात बर्दाश्त कर सकता था, और आज रूपाली जी की बात सुनकर उसकी वो हद पार हो गई। उसने गंभीर भाव चेहरे पर लाते हुए कठोर लहजे में जवाब दिया, जिन्हें आप सरदर्द कह रही हैं वो पत्नी है मेरी। शादी के साथ फेरे लेते हुए जिंदगी के हर सुख दुख में उनका साथ निभाने का वादा किया है मैंने। वो अर्धांगिनी है मेरी और उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, जिससे मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। जब तक वो ठीक थी तो मेरा क्या, इस पूरे परिवार का अकेले ख्याल रखती थी, और आज जब उन्हें केयर की जरूरत है तो मैं अपने फर्ज से मुंह मोड़ लूं, उन्हें उनके मायके भेज दूं? इतना स्वार्थी नहीं हूं है। और यकीनन अगर आहाना की जगह आप होती तो ऐसी मुश्किल घड़ी में पापा भी आपकी हिम्मत बनकर आपके साथ खड़े होते, आपको आपके मायके भेजकर अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करते। ये अच्छा नाटक लगा रखा है इस लड़की ने, पहले तो अपनी लापरवाही से हमारे कुलदीपक को जलने से पहले ही बुझा दिया और अब बीमारी का बहाना करके सबकी नजरों में दयनीय बनकर सबकी सहानुभूति बटोर रही है। बहू पलंग तोड़ती है और यहाँ सारा काम हमें देखना पड़ता है, उसे तो सब काम करा कराया मिलता है, खुद महारानियों जैसे अपने कमरे में बैठी शोक मनाती रहती है, और उसे एक लड़की के चक्कर में सब अपना काम धंधा छोड़कर घर में बैठे उसके आगे पीछे लगे रहते हैं। रूपाली जी अक्षय का जवाब सुनकर खींच उठी थी और उनके मन में आहाना के लिए भरा जहर शब्दों में कड़वाहट बनकर उभर आया था, जिसने अक्षय के सब्र की हदों को पार कर दिया। चेहरे पर क्रोध उभर आया और सख्त लहजे में उसने उन्हें टोक दिया, बस कर दीजिए मम्मी, हर बात का दोष उन्हें देना बंद कर दीजिए, उनसे बड़ा नुकसान और किसी का नहीं हुआ है। अगर आप किसी के जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकती, उनका दुख कम नहीं कर सकती, तो उस अपनी कड़वी बातों से उनके दुख और तकलीफ को बढ़ाने का भी कोई हक नहीं है आपको। मुझे तो यकीन नहीं होता कि उनका दुख, उनकी बीमारी आपको नाटक लगता है, यहाँ उन्हें अपनी शरीर का होश नहीं और आपको काम की चिंता खाई जा रही है, आपको उनकी फिक्र नहीं, पर ताने सुनाने से आप कभी बाज नहीं आती। माँ इतनी भी पत्थर दिल मत बनिए कि आपके आगे इंसानियत भी शर्मसार हो जाए, ऐसा सलूक तो कोई अपने दुश्मन के संग भी नहीं करता जैसा आप मेरी बीवी के साथ करती हैं। अरे इंसान दूसरों के दुख में ही जाकर सहानुभूति जता देता है और आपको अपनी ही बहू का दर्द, उनकी तकलीफ नजर नहीं आती।
आपको फिक्र है तो सिर्फ काम की। बहुत बुरा लग रहा है ना आपको कि उनके कारण सब काम धंधा छोड़कर घर बैठे थे, तो किसी को उनके लिए कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं संभाल लूंगा उन्हें, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और चिंता मत कीजिए, उनके इलाज पर अपने पैसे खर्च करूंगा और आपको भी घर खर्च के पैसे वक्त पर मिल जाएंगे। मेरे काम का नुकसान होगा भी तो उसका असर आप पर या इस घर पर नहीं होगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और एक बात, नौकर बनूं या दाई मैं बन रहा हूं। आपसे मैं उनके लिए गिलास पानी लाने भी नहीं कहता और ना ही आगे कहूंगा। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बख्श दीजिए उन्हें, छोड़ दीजिए उनका पीछा। उनकी हालत पहले ही ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आपके इन फिजूल के तानों के कारण उनकी कंडीशन और खराब हो। सख्त लहजे में आज उसने उन्हें वार्निंग दे दी थी। साफ जाहिर था कि वो उनका ऐसा व्यवहार अबाउट टॉलरेट नहीं करेगा। रूपाली जी पहले तो बेयकीनी से उसे देखती ही रह गई, जैसे विश्वास करने की कोशिश कर रही हों कि आज जो लड़का उनके सामने खड़ा है वो उनका वही बेटा है जो कभी ऊंची आवाज में उनसे बात तक नहीं करता था, उनकी किसी बात का विरोध नहीं करता था। फिर जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके शब्दों ने उनके बेटे को उनके खिलाफ कर दिया है, तो उन्होंने तुरंत ही अपना मम्मा कार्ड फेंका और यूं दिखाया जैसे उसके इस व्यवहार से बेहद आहत हों। ये कैसे बात कर रहे हो तुम हमसे? हम क्या तुम्हें उनकी दुश्मन लगते हैं? कहना क्या चाहते हो कि उनकी ये हालत हमारे कारण हुई है? उसी तरह से जैसे आपने की थी, और दुश्मन नहीं तो हितैषी भी नहीं लगती। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता, बस इतना कह रहा हूँ कि आहाना से दूर रहिए। वो इस कंडीशन में नहीं कि आपके तीखे शब्द, कड़वी बातें और ताने बर्दाश्त कर सके। अक्षय का गुस्सा चरम पर था और लहजा सख्त, जिसे रूपाली जी भी गुस्से से भड़क उठी। हम उनके पास जाते भी नहीं हैं और ना ही उनसे हमारी कोई दुश्मनी है। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि ये सब करके अब क्या हासिल होगा? जो होना था हो गया, अब क्या सारी जिंदगी मातम बनाएगी? खुद को कमरे में बंद रखेगी तो क्या सब ठीक हो जाएगा? हमने भी अपना पोता खोया है, क्या हमें कोई दुख नहीं? बस उसी ने अपनी औलाद को खोया है और दुख उसे ही है।